Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Chautha Adhyay, Chhatva Mantra Chal Raha Tha. छठवे मंत्र का उच्चारण भी
द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्नन्यो अभिचकाशिति द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन् अन्यः अभिचकाशिति। ये मंत्र हम लोग देख रहे थे। द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, ये सब छंदस प्रयोग है और उच्चारण करते हुए दौ सुपर्णो सयुजो और सकायो अर्थात दो पक्षी सदा साथ में रहने वाले मित्र के रूप में एक ही वृक्ष के ऊपर रहते हैं। वो कभी कैसे रहते हैं? परिसर सुजाते एक दूसरों को आलिंगन डाल के, मित्रता आलिंगन तो मित्रता का एकमात्र संबंध, अच्छा तरह संबंध है। और आलिंगन इसलिए हो रहा कि एक दूसरे के बिना स्थिति होती नहीं है। जीव क्या है? जो वृक्ष के ऊपर एक जीवात्मा पक्षी है, अंतकरण वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब ही जीव है, चिदाभास। और उसकी स्थिति किसके कारण है? बिंब के कारण। और बिंब कब नाम आया? जीव के कारण। मैंने एक दूसरे के बिना स्थिति नहीं है, इसीलिए यहां परिसर सजाते मैंने अलिंगन। तो अलिंगन का अर्थ भी पहले बताया कि कुछ भी उस समय नहीं जानते, मतलब दोनों का एक होने पर कुछ जानते ही नहीं है, इस प्रकार परिसर सजाते हैं। आलिंगन का अर्थ यही होता है कि एक दूसरे के बिना स्थिति नहीं है। बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं और प्रतिबिंब के बिना बिंब नहीं, दृष्टा के बिना दृश्य नहीं, दृश्य के बिना दृष्टा नहीं है। इसी को एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो इस शब्द को परिसर सजाते मूल में कहा। कल हम लोग भाष्य देखते हुए आ रहे थे, सुपर्णो शोभना पतनो शोभना गमनो सुपर्णो, अर्थात अच्छी तरह से उनका गमन और पतन दोनों के दोनों होने के कारण सुपर्णा शब्द का प्रयोग किया गया। अभी अच्छी तरह से क्यों इनका गमन होता है या अच्छी तरह से पतन क्यों होता है, तो उनके पद चिन्हों का कुछ भी हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए संसार में इतने प्रकार के वाद फैले हुए हैं। अनात्मवाद जितने चाहे उतने वाद फैले हुए हैं। मैंने उस दोनों के पद चिन्हों को हम लोग जानते नहीं है, तभी तो अज्ञेयवाद अनात्मवाद अनेकांतवाद लोकायतवाद कई वादों की चर्चा आते है शास्त्रों में। ये सब क्यों फैले? तो बोलते हैं जीव और परमात्मा ये दोनों का अच्छा पतन हो गया, पता ही नहीं चला हमें। यदि पता चलता था पक्षिन्नों का तो इतने वादों की जरूरत होती नहीं थी। और जब इस सभी शास्त्रों की जरूरत किसके लिए? इन्हीं दोनों को जानने के लिए, वास्तविक जीव और परमात्मा। पांचवा मंत्र और छठवां मंत्र प्रसिद्ध ये है। ये दो मंत्र हमेशा सभी शास्त्रों में आते रहते हैं और दोनों का अर्थ कोई अलग नहीं है। केवल रूपक देकर अलग अलग रूपक दिए हुए, जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसी प्रकार अनेक रूप से उपमा देकर, रूपक देखकर समझाकर हम लोगों को एकमात्र प्रतीति तीन ही वस्तु की करना है। सदा विचारित तस्मात जगत जीव परात्मनः जीव भाव जगत भाव बादे स्वात्मेव शिष्यते। पंचदशीकार विद्यारण्य मुनि चित्रकार दीप छठवे दीप प्रकरण में ही बारहवें श्लोक है, वहां बोल दिया सदा तीन वस्तु का ही विचार करना है, जगत जीव और ईश्वर परमात्मा, ये तीन ही का ही सदैव चिंतन करना है। और चिंतन करना है, विचार करना है, तो विचार से क्या फल होगा? विचार करते करते, तीनों का विचार करते 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 जाएंगे तो दो का बाद हो जाता है, दो का जगत भाव जीव भाव दोनों का भी बाद हो जाता है, और एक आत्मैव शिष्यते, एक परमात्मा ही शेष रहता है। परिशेषवाद बोलते हैं ना, परिशेष, वो नहीं है, नहीं स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, कोई भी निषेध करते 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 शेष क्या रहता है? परमात्मा। यहां दोनों का बाद, जगत का बाद, जीव का बाद, उसको भाव शब्द लिया, जीव भाव और जगत भाव, इन दोनों का बाद। बाद का अर्थ दिखाई देना ऐसा नहीं, जीव न दिखाई दे और जगत दिखाई न दे, ऐसा बाद नहीं। बाद का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय, बाद का अर्थ इतना ही, चलते फिरते खाते सब कुछ करते हुए भी जगत भाव और जीव भाव दोनों का केवल ये निश्चय हो जाए, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? नित्य है। और इतना मिथ्या भाव सिद्ध करके आत्मा शेष रह जाता है, इसी के लिए ये सब शास्त्र है। दोनों श्लोक का भाव तो इतना सुंदर ये है कि हमेशा तीनों का विचार करना है। और इसी को प्रकृति यहां बोल दिया, बकरी बोल दिया, और वहां फिर बकरी के दो बच्चे, एक जीवात्मा है, अज्ञानी जीव है, जो सदगुरु है वो परमात्मा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कोई दूसरा थोड़ी है विवेक। जो दूसरा जो बकरी का बच्चा है, ज्ञानी बच्चा, वो भी परमात्मा है। और इसमें एक ही वृक्ष की उपमा देकर दो पक्षी रहते बताया। गीता में सातवें अध्याय में एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति अष्टदा और परा प्रकृति एकमात्र जीव, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टा। अपरा इयम, ये अपरा प्रकृति हो गई। अब यहां केवल त्रिविध इसलिए कि वो सत्व रज और तम तीन गुणा त्रिगुणात्मक है, पूरी की पूरी सृष्टि प्रकृति है, चाहे वो अष्टदा हो, चाहे वो त्रिव्रत हो, चाहे पांच महाभूत की हो, कितने की भी हो, उसमें गुण कितने हैं वेदांत के अनुसार, क्योंकि वेदांत की चर्चा चल रहा है, तीन ही गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अब ये तीन गुणों की प्रकृति है तो इनके पुत्र भी कैसे होगे? त्रिगुणात्मक होगी। इसलिए तो बोल दे कि भवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, अपने स्वरूप वाली प्रजा देगी। और सातवें अध्याय में, तेरहवें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति को दूसरे शब्द से कहा, क्या बोल दिया वहां पर? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तेरहवें अध्याय का पहला श्लोक, एक को प्रकृति को, जड़ प्रकृति को, अपरा प्रकृति को क्या शब्द दिया? ये शरीर ये है, और इदम का अर्थ इदम शरीर भी आ गया और पूरा का पूरा जड़ आ गया, प्रकृति पूरी प्रकृति आ गई। जो वहां अपरा प्रकृति से बोला गया उसी को यहां क्षेत्र रूप में आ गया, और वहां अपना जीवभूता महाभावो यया इदम धारयते जगत, उसको तो केवल अपरा अपरिमित स्त्वन्यम प्रकृतिम अन्यम पराम, जो जीव प्रकृति है, जीव को भी प्रकृति बोल दिया सातवें अध्याय में, वो जीव को कौन सी प्रकृति बोल दिया, परा प्रकृति, जीव को परा प्रकृति, और अष्टदा को अपरा। अष्टदा पांच भूत है, बुद्धि है और अहंकार है, मन है, इन आठ को अपरा प्रकृति, क्योंकि ये जड़ है बोल के। और जो चेतन जीव है, जीव के कारण ही तो ये सब दिखाई दे रहा है, यदि जीवात्मा नहीं होते तो कौन सी प्रकृति इसमें रहेगी। तो जिस जीव के द्वारा ये धारण की गई प्रकृति है, उस जीव को कौन सी प्रकृति बोलते हैं, परा प्रकृति बोल दिया। और इतना बोलने के बाद फिर भी वहां सातवें में एक श्लोक बहुत सुंदर आया कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। फिर वहां भी इन दोनों से भिन्न मैं हूं बोली दिया, मन मैं सभी का, इन दोनों का भी आश्रय, चाहे जड़ प्रकृति का हो चाहे चेतन प्रकृति का हो। जड़ प्रकृति अष्टदा और परा प्रकृति जो है जीव चेतन है, इन दोनों प्रकृति पूरा का पूरा कहां पर है, मेरे में ही है, मतलब मैं आधार हूं और ये मेरे ऊपर ही दोनों के दोनों कल्पित है बोल दिया। और वहां तेरहवें में एक तरफ जड़ को क्षेत्र शब्द प्रयोग किया और चेतन को क्षेत्रज्ञ, मैंने अपरा प्रकृति को ही क्षेत्र और परा प्रकृति को ही क्षेत्रज्ञ जानने वाला। और वहां भी थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कि क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्र सभी में मैं हूं, फिर वहां एक थोड़ा सा बोलकर अपने को वहां भी अलग ही माने। और पंद्रहवें अध्याय में तो द्वायुमो पुरुषो क्षरश्च क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर इति उच्यते, और उत्तम स्पुरुष वहां भी तीन कर दिया, एक क्षर अक्षर। अभी क्षर किसको बोलते हैं, यहां जड़ लीजिएगा, जड़ अपरा प्रकृति है क्षेत्रज्ञ है, उसी को क्षर प्रकृति, क्षर मणि नस्वर। और जहां परा प्रकृति बोल दिया, क्षेत्रज्ञ बोल दिया चेतन, और उसी को यहां क्या बोल दिया, अक्षर बोल दिया। और इन दोनों से भिन्न, इन दोनों का आश्रय कौन, मैं, माने मेरे ऊपर ही भी आश्रित है। यदि विचार करते करते जाओगे तो ये दोनों कार्य का बाद हो जाएगा और कारण मैं ही शेष रहूंगा। माने यहां दोनों श्लोक का भावार्थ यहां से लेकर वहां तक दूसरा कोई नहीं है, जीव और जगत और परमात्मा तीनों का ही विचार करने के लिए ये श्लोक है। कहीं पर पक्षी के उदाहरण देते हैं और ये पक्षी का उदाहरण बहुत सुंदर है, शास्त्रों में देने पर समझ भी नहीं आता है, लगता है कि कोई कठिन है, क्या दोनों पक्षी हो गए, क्या वृक्ष होगा। तो अपने गीतकार लोग, भावगीत वाले, भजन वाले अपने भाषा में डालते हैं, अपने भाषा में भी आपको मैं बताता हूं, एक पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, इसको देख ली प्रदीप राय का, कितना सुंदर गीत है, एकदम सुंदर। और भी कई ऐसे पिंजरे के पंछी रे, मैंने इसको पक्षी बोल दिए यहां से लेकर। और एक भावगीत मैं बचपन में सुनता था, कल से मैं चिंतन किया कि ये पक्षी दिया तो पक्षी का एक भावगीत होना चाहिए, सुधीर फड़के ने गाया हुआ, आप लोग मुंबई में रहने वाले प्राय सुना ही होगा। आकाशी झेप घेरे पाकरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, इसको एक सोने की, ये बेड़ी तो दोनों होते हैं ना, एक लोहे की भी होती है और एक सोने की, तो ये उस पक्षी के लिए लोहे का पिंजरा है और इस पक्षी के लिए सोने का पिंजरा है, और इसको छोड़ तुझ भवती वैभव माया फल रसाल मिलते खाया, तुझ भवती वैभव माया फल रसाल मिलते खाया सुकलोलुप झालिकाया हा कोटवर वेड्या घेसी आसरा सोडी सोन्याचा पिंजरा। तो जो भौतिक वैभव माया, तो हम लोगों के अपने अगल बगल में एक वैभव है ना, अपना धन दौलत गाड़ी बंगला सब वैभव है, और इसके कारण क्या मिलता है, फल रसाल मिलते खाया, सुंदर फल खाने के लिए फल मिल रहा है, इसलिए इसी में मस्त है हम लोग। इसके कारण सुख लोलुप झाली काया, मानी सुख के आदिन हो गए, बस ये सुख हमें मिलना ही चाहिए। सुख लोलुप झाली काया हा कोटवर वेड़ा घेसी आसरा, इसका आसरा कितना, आसरा मैंने आश्रय लेकर कितने दिन हो गए, न जाने अनंत जन्मों तक इसका आश्रय लेकर ही, इसलिए बोलते हैं कोटवर वेड़ा घेसी आसरा सोड़ी सोन्याचा घर कसले ही तरकारा विष समान मोती चारा घर कसले ही तरकारा विष समान मोती चारा मोहाचे बंधन द्वारा मोहाचे बंधन द्वारा तुझ आडवी तो हा कैसा पिंजरा सोडी सोन्याचा पिंजरा घर कसले ही तरी कारा, कारा मनी घट, ये घर क्या है, ये तो घट है, कब फूट जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए घर कसले हे तरी कारा विष समान मोती चारा, ये जितना भी खाते हैं ये विष तो है, वो विष तो एक ही बार मारता है और ये विष तो जन्मो जन्म का, इसलिए विष समान मोती चारा मोहाचे बंधन द्वारा, ये घर क्या करता है, मोह के बंधन के माध्यम से आडवी तुझ आडवी तो हा कैसा पिंजरा, मैंने मोह के बंधन के द्वारा हमें कहां जाने के लिए रोक रहा है, आकाशी जेप के मूल वाए, आकाशी आकाशी ब्रह्म आकाशस्थल लिंगम, मैंने ब्रह्म का आकाश ब्रह्म सूत्र में आया, आकाश लिंग है किसका, ब्रह्म का, वहां जेप वहां उड्डान मारो, मैं तुम्हारे लिए यह है ही शक्ति है तो वहां जाने के लिए, लेकिन वहां जाने के लिए ये बंधन में डाल रहे, तुझे पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, करी डोंगर हिरवीराने करी डोंगर हिरवीराने, जाओ लांडोनिया सरिता सागरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, तुझ पंख दिले देवाने, कलमेव पंख, ये सब हमारे पंख है, धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म उपासना ये सब हमारे क्या है, पंख है, तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, जब पंख दिए ही है तो अपने सामर्थ्य से विहार करो, और विहार करके करे क्या, कर डोंगर हिरवे राने, या डोंगर का अर्थ पहाड़ आदि होते हैं, इसको बहुत सुंदर हरा भरा बनाओ, और ये डोंगर क्या है, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े लोभ चोर सांगत गुरु बिना कौन बताए बाट, बड़ा दिघट यम घाट वहां बता वहां बधारा दे, डोंगर ये सभी हमारे ये वो शत्रु है, इस शत्रु को पार कर इसको एकदम सुंदर हरा भरा बन, हरा भरा किससे हो गए, परमात्मा के नामस्मरण से ये जितना भी है हरा भरा ही हो जाता, और उसी के माध्यम से जा ओलांडोनिया सरिता सागरा, बोलते हैं ना ये नदी है संसार नदी है संसार सागर है इसमें हम फंसे हुए है, और भगवान भी यही कुरुक्षेत्र के मैदान को एक नदी क्या नदी की उपमा दे, भीष्म द्रोण तटा जयद्रत जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपे नवन करणे नवेला कुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी, कैवर्तक केशवा नदी मान सरिता सागर जो भी ये सरिता सागर आया हुआ है इस सब को ओलांडोनिया मान इसको पार करके जा और पार करके जाकर वहां ही झेप लगाओ जहां आकाश है सुंदर वर्ण कष्टाविन फल न मिलते तुज कलते परिनावलते कष्टाविन फल न मिलते तुज कलते परिनावलते हृदयात व्यताही जलते हृदयात व्यताही जलते का जीव बिचारा होई बावरा सोडी सोन्याचा पिंजरा कष्टाविन कहीं फल अच्छा फल मिलता है कलते परी न वलते सबको पता चलता है लेकिन वैसा प्रयास नहीं करता है ये सब जानकर हृदय में व्यथा होती है का जीव बिचारा होई बावरा बावरा सा पगला सुंदर है घामातुन मोती फुलले श्रमदेव घरी अवतरले श्रमा घामातुन मोती फुलले श्रमदेव घरी अवतरले घर प्रसन्न तेने नटले घर प्रसन्न तेने नटले हा योग जीवनी आला साजिरा सोडी सोन्याचा पिंजरा आकाशी झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा ये पाखरा मतलब पक्षी के ऊपर बहुत सुंदर है कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेश बोलते हैं ना भगवान इसलिए बोलते हैं घामातुन मोती फुरले हम परिश्रम करते हैं पसीना बहाते हैं तो उसी में एकदम सुंदर मोती खिलते हैं और उसी श्रम देव घरी अवतर ले यदि परिश्रम करके कमाते हैं तो हमारे घर में किसका प्रकटन होता है श्रम देव का घर प्रसन्नते नहीं नटले घर में थोड़ा भी कोई काम नहीं करते ना मरता तो अच्छा होता निकम्मा होकर खाता है घर भी तो यही होते हैं और परिश्रम करके खाते हैं तो घर प्रसन्नते ने नटले हा योग जीवने आला साजरा ये सुधीर फड़के ने गाया हुआ पहले मैंने सुना था मैंने कल से चिंतन कर रहा कि एक अपना भावगीत को देखना चाहिए तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये किया कि यह कोई दूसरा क्या बकरी है क्या बकरा बकरी क्या जो भी है यहां कोई दूसरा नहीं है प्रकृति मनी जगत है और ये जीव इस मोह के बंधन में सब पड़ा हुआ है और पढ़ने के कारण ये छोड़ना नहीं चाहता है और दूसरा एक पक्षी या बकरा बैठा हुआ है ज्ञानी है ईश्वर है तो आपको मैं ये कहा देखिएगा सुपर्णा मैंने दो पक्षी की चर्चा चल रही थी सुंदर और दोनों का आना जाना कुछ भी पता चलता नहीं है इसलिए संसार में इतने अनेक प्रकार के वाद फैले हैं मत फैले हैं संप्रदाय जो भी धर्म सब इतने क्यों यदि उन दोनों का पता रहता तो इतने होते क्या